ओम शांति। सप्ताह सुंदर को भेज देंगे 50 फीट से 24 फीट 81 तथा पचास। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि किसकी याद में बैठे हो, तूने कहा शिव बाबा। बुलंद आवाज में कहना चाहिए कि शिव बाबा की याद में बैठे। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से, मानो आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से या जीवात्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। फिर यहाँ क्यों कहा आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से? जहाँ कनेक्शन की बात आती है तो कनेक्शन बुद्धियों से ही दुखता है अथवा शरीर की कर्मेंद्रियों से ही दुखता है। तो आत्माओं का कनेक्शन माना आत्मिक स्टेज वालों का कनेक्शन शिव बाबा से है। तुम शिव बाबा के बनते हो इन द्वारा, इनके द्वारा, इन द्वारा, इसके द्वारा क्यों नहीं कहा? द्वारा मन नहीं दिया, ये माता पिता दो हैं, राम और कृष्ण, जो सत्यरूपी रंगमंच के हीरो हीरोइन। इनके द्वारा तुम बाप के बनते हो, क्योंकि शिव बाबा इन द्वारा ही मिलते हैं और कोई के द्वारा मिलते नहीं। ये बीच में दलाल भी कहा जाता है, तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो सिर्फ बीच में मातक है। बाप के साथ क्या क्या लेना है और क्या देना है? सत्संग देना है और सब कुछ लेना है। तो ये हिसाब किताब ब्रह्मा की सोल से नहीं है, क्योंकि इनका भी लेन देन बाप से है। ये भी उस बाप को कहते हैं कौन? ब्रह्मा भी उस बाप को कहते हैं, इस बाप को नहीं। ऐसे क्यों कहा है? भविष्य में आने वाले पाइप की तरह से सारा किया। यह भी उस बाप को कहते हैं, बाबा मेरा सब कुछ आपका है, तुम अभी एक तो निश्चय आत्म और फिर ये भी निश्चय हम आत्माएं हैं। अभी परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते। ये सब कुछ शिव बाबा के अर्पण किया हुआ है। ऐसे ऐसे करो, इनको कहा जाता है श्रीमत। बाप खुद कहते हैं मैं इसे पुराने तन में प्रवेश करता हूँ, ये भी प्रतिष्ठितावन बन रहे हैं। ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा ये भी पावन बन रहे हैं, इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है। मेरे साथ हिसाब किताब है? हिसाब किताब पूर्व जन्मों का होता है या परमधाम का होता है? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होता है, तो इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है। किसने कहा? तो बाबा ने कहा। तो बाबा तो परमधाम में रहता है 5000 वर्ष, उसका क्या हिसाब किताब हुआ? उनके हिसाब किताब की बात नहीं है। वो सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करके विश्व पिता का पार्ट बजाता है उसकी बात है। हो शिव बाबा क्या आप ब्रह्म तो लिखते किसको? शिव बाबा को बीच में कौन आ गया? ब्रह्म। माया किसको बीच में ला देती? बुद्धियों किसने अटकाई देती है? साकारी में मीडिया में बुद्धियों को अटक जाता है, बुद्धियों को घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो दूसरा सब कुछ भूल जाएगा, शरीर भी भूल जाएगा, फिर निरंतर एक शिव बाबा ही याद आता रहेगा और तरफ से बुद्धियों को हट जाएगा। बल ये दुनिया ये शरीर होगा परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी। तब जब बुद्धियों की प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी एक शिव बाबा के साथ, ये अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है, अंत में हमको अपना शरीर भी याद न पड़े। हम नंगे आए हैं, नंगे जाना। बाप कहते हैं अपन को नंगा समझ, अशरीरी हो मुझे बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूँ, तुम भी अशरीरी थे फिर तुमने पार्ट बजाया, अभी फिर तुमको पार्ट बजाना है। ये मेहनत है, विश्व का मालिक बनना कोई कम बात नहीं है। मैं ही विश्व का मालिक बना सकता हूँ, ये देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु उनको दैवी गुण वाले देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इन्हों को अपने बच्चे होंगे, वो ही उन्हों को माँ बाप मानेंगे। परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से लक्ष्मी नारायण को तुम्हें माता या पिता कह देते हैं। वास्तव में माता और पिता है कौन? लक्ष्मी नारायण को फिर क्यों कह देते हैं भक्ति मार्ग? दो माता पिता है नहीं? लक्ष्मी नारायण तो माता पिता हो ही नहीं सकते। माता पिता से जो प्राप्ति होती है आत्माओं को, वो तो अनेक जन्मों की प्राप्ति है, और वो अनेक जन्मों की प्राप्ति कराने वाला त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो कोई देह को धारण करने वाली आत्माएं नहीं हो सकती। वो तो सिर्फ परम पिता परमात्मा ही है, जो माता भी बनता है और पिता भी बनता है। माता किसके द्वारा बनता है? जगदम्बा ब्रह्मा के द्वारा। वास्तव में जगदम्बा यह ब्रह्मा है, नाम भी है ब्रह्म मन माँ, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, मन बड़ी माँ, सारी प्रकृति माँ, और जगत पिता माने रुद्रमाला के पहले जो दो मण के हैं उन्हीं में परमात्मा शिव प्रवेश करते पहले पहले, और उन्हीं के थ्रू माता पिता बनते हैं। तो वास्तव में ये महिमा है शिव बाबा की, ये कोई लक्ष्मी नारायण की महिमा नहीं है। क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। देवताओं की महिमा गाते हैं आप, सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, परंतु उन्हों की हम पूजा क्यों करते हैं ये किसी को भी पता नहीं। अभी तो मैं ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, किसकी? तुम लक्ष्मी नारायण की ये महिमा नहीं गाएंगे कि लक्ष्मी नारायण तुम्हारे माता पिता। हाँ तुम जानते हो शिव बाबा वो निराकार परम पिता परमात्मा है, उनसे ही हमें सुख घनेरे मिलते हैं। बाकी जो कुछ भी संबंधी आदि हैं, उनसे तो दुखी ही मिलता है। ये तो एक फैक्ट्री है जिससे सर्व संबंधों की रचना मिल जाती है। कौन है फैक्ट्री? शिव बाबा। सर्व संबंधों की रचना, दुनिया में ऐसा नहीं होता है कोई जिससे सर्व संबंधों की रचना मिले। इसलिए बोला भक्तवाणी में, ये ऐसा खिलौना तुमको मिला हुआ है जिसको जिस रूप में चाहो, जब चाहो और जैसे चाहो वैसे इस खिलौने से खेल सकते हो। कौन सा खिलौना? शिव बाबा। इसलिए बाप कहते हैं, बाबा काका चाचा आदि सबसे बुद्धियोग हटाकर माम एकम याद करो। माम एकम याद करो, कोई दूजम याद नहीं करो। इसका क्या मतलब है? क्या ये कहें कि एक बिंदी को याद करो, दूसरे कोई को याद नहीं करो? एक बिंदी का पता कैसे चलेगा? पैकुलरिटी क्या होगी जो हमें निश्चय हो कि हमने उस एक बिंदु को ही याद किया? क्योंकि बिंदु बिंदु आत्मा तो सब एक जैसे। तो पैकुलरिटी का पता तब पड़ता है जब वो आकर के प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं। इस दुनिया के कल्याण के लिए, सर्वात्माओं के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करके जाते हैं, और ऐसा करके जाते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया की हर मनुष्य आत्मा उस गॉड फादर को याद करती है। याद उसको किया जाता है जो कुछ करके जाता है। और जो भी तुम्हारे मित्र संबंधी याद है, सब तुमको दुख देने वाले, इस जन्म के भी और जन्म जन्मांतर के भी। तुम गाते भी हो दुख हरता सुख करता, सर्व का सदगति दाता एक ही है, वही हमारा सब कुछ है। बाकी सबसे तो दुख ही मिलता है। टीचर है जो तुझको दुख नहीं देते, टीचर के पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो, हुनर सिखलाने वाले भी होते हैं, वो तो सब अल्पकाल की टीचिंग करते हैं। अल्पकाल का हुनर सिखलाते हैं, और ये टीचर कैसा है? कौन सा सदाकाल का हुनर सिखलाता है? है? जन्म जन्मांतर के लिए कौन सा हुनर सिखलाता है? भूल गए, राजयोग। ऐसा योग सिखलाता है जिसमें राज भरा हुआ है। पहले तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का राज, और फिर सारे विश्व को कंट्रोल करने का राज भरा हुआ। ये कंट्रोलिंग पावर, ये राजाई की ट्रेनिंग दुनिया में और कोई भी कर नहीं दे सकता। डॉक्टर की ट्रेनिंग देंगे, वकालत की ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग देंगे, मास्टरी की ट्रेनिंग देंगे, लेकिन राजाई करने की ट्रेनिंग और कोई नहीं दे सकता, और वो भी एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर। दुनिया में इतने बड़े बड़े छोटे छोटे राजाएं हुए हैं, अनगिनत तादाद। इन राजाओं को राजाई करना किसने सिखाया? कब सिखाया? जरूर ये संगम युग ही है जिसमें परमात्मा बाप आकर हर मनुष्य आत्मा को अपनी अपनी प्रारब्ध बांट, अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार भक्ति में भी महिमा एक राम अथवा परम पिता परमात्मा की ही करते हैं। कहते हैं सर्वता सदगति दाता राम, उनको याद करना चाहिए। वास्तव में भक्ति भी एक ही करते हैं, वो एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं, बाकी सब तुमको क्या बनाते हैं? पुजारी बनाते हैं। एक तुमको पूज्य बनाते जो सारे संसार में तुम्हारी पूजा हो, और बाकी सब देहधारी तुमको पुजारी बनाते हैं, पूजा करना सिखलाते हैं। तुम पहले एक एक शिव बाबा की पूजा करते हो, उनको सत्व प्रधान भक्ति कहा जाता है। फिर आत्मा भी सत्व प्रधान से सत्व रजो तमो बनती है। तुम समझते हो कि हम पुजारी बनते हैं, तुम पहले एक शिव की पूजा ही करते, फिर कलाएं कमती होती जाती, भक्ति भी सत्व प्रधान से सत्व रजो तमो बन जाती, फिर तुम तमो प्रधान पुजारी बन जाते। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर बना हुआ है, आपे ही पूजी आपे ही पुजारी। तो 84 जन्म पूरे लेते हैं, उनकी ही कहानी है, उनको ही बाप बैठे बतलाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे कैसे लिए। 84 जन्म लेने वालों को नहीं बतलाते, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही बैठ बतलाते, हिसाब ही उनका है। इनका जिसने पूरे 84 जन्म लिए, जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं, बाद वाले नहीं। सत्युग के लक्ष्मी नारायण की बात नहीं है, इसकी बात है जो संगमयुगी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, विश्व के मालिक, पहले पहले पूज्य देवी देवता, आदि देव और आदि देवी, वो ही तो पुजारी बनते हैं, उनको ही बाप बैठ बतलाते हैं 84 जन्मों की कहानी। क्या मतलब? और दूसरों को नहीं बतलाते? कौन बतलाते? शिव बाप। तो बाकी सब क्या करते हैं? इसलिए कहते हैं कि भक्ति मार्ग में गंगा जब ऊपर से नीचे आई तो किसने धारण की? एक शंकर ने धारण की। बाबा भी मुरली में कहते हैं गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है, क्योंकि ये परंपरा रही है कि बाप का बड़ा बच्चा ही बरसे का हकदार बनता है। तो निराकार गॉड फादर ज्योति बिंदु शिव, उसका वर्षा क्या है? निराकार से क्या निराकारी वर्षा चाहिए? निराकार वर्षा है ज्ञान रत्न का, और साकार वर्षा है विश्व की बात का ही। जो जितना निराकार बाप से ज्ञान रत्नों को धारण करता है, उतना उतना वो विश्व की बात का ही भी प्राप्त करता है, क्योंकि ये ज्ञान रतन ही आगे चल करके स्थूल रतन बन जाते। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ा के चला जाता हूँ और देवी देवता सनातन धर्म तुम स्थापन करते रहते हो, नहीं, मैं ही आकर के देवी देवता सनातन धर्म स्थापन करता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। गीता में भूल से कृष्ण भगवान वाक्य लिख दिया है, ये भूल की शूटिंग भी कहाँ से होती? संबंध में होती। कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा को ही भगवान समझ बैठते हैं कि वो ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, भगवान तो एक ही होता है, ऐसे घोड़े की चटनी भी भगवान, तो राम भी भगवान नहीं, गॉड इज वन कहा जाता। वो तो कहते हैं ठिकर भिक्कर कण कण में है, परंतु ऐसे तो नहीं हो सकता कि मिट्टी की ढेले की तरह ठोकर लगे माया की और टूट जाए ज्ञान में से। ऐसे में भी परमात्मा व्यापक होता है नहीं। ज्ञान के रास्ते में विघ्न की दीवार बनकर के खड़ा हो जाए, न खुद ज्ञान का प्रचार प्रसार होने दे परमात्मा के महावाक्यों का, और न दूसरों को परमात्मा के महावाक्य उच्चारण करने दे, बोलने दे और समझने समझाने दे, ऐसे भीतर बुद्धियों में परमात्मा का प्रवेश नहीं होता। उन्होंने तो कण कण में बता दिया, कण कण की क्या वैल्यू है? कण कण जैसी नाती आत्माओं में भी परमात्मा को व्यापक समझ लिया, परंतु ऐसे नहीं हो सकता। भगवान की तो महिमा अपरम्पार है, कण कण की कोई महिमा होती है क्या? मिट्टी के ढेले की भी कोई महिमा होती है क्या? कहते हैं हे बाबा, तुम्हारी गति मती न्यारी, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है गति सदगति के लिए, वो वंडरफुल है। गति मती मानी, मती माना बुद्धि, और गति माना चाल। तो परमात्मा को कहते हैं कि तुम्हारी चाल और तुम्हारी मती, तुम्हारी बुद्धि देवताओं से भी न्यारी है, तो मनुष्यों से भी न्यारी है, तो असुरों से भी न्यारी, क्योंकि तुम्हारी जो मत मिलती है वो सदगति करने के लिए वंडरफुल मत है। कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि परमात्मा की गति मती क्या है, जब तक वो खुद आकर के नहीं समझाए। बाप जब सन्मुख आए तब बच्चे भी समझ सके। बच्चे कौन से? वही चौरासी जन्म लेने वाले सन्मुख बैठने वाले, क्योंकि जो सन्मुख नहीं बैठ सकते बीच में ही छोड़ करके चले जाते हैं, दूसरों से बन जाते हैं, दूसरे खेमे में चले जाते, वो तो परमात्मा बाप की बात समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आत्म की स्टेज में नहीं। बाप तो कहते हैं कि मेरे पास वही बच्चे ठहर सकेंगे, वही रह सकेंगे जो पूरे मरे हुए होंगे देह अभिमान। इसलिए रोज मुरली में बताते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। गाते भी है सर्व का सदगति दाता परम पिता परमात्मा, तो बुद्धि ऊपर में जाती है, दुख के टाइम उनकी ही याद आती है। अगर राम सीता बुद्धि में हो फिर तो सारा रामायण बुद्धि में आ जाए। तुम तो पुकारते ही हो एक बाप को, सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी। पतित पावन एक ही है, कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते हैं पतित पावन सीताराम, तो कुछ भी नहीं समझते। ये सब है भक्ति मार्ग का जन्म। फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ज्ञान मार्ग में, संगम युग में ये फाउंडेशन पड़ता है। जो भक्ति मार्ग में गाते हैं पतित पावन सीताराम, पतितों को पावन बनाने वाले कौन? सीताराम। कौन हूँ सीताराम? फर्स्ट क्लास सीता कौन है? ब्रह्मा। और राम माना राम और कृष्ण, जिनको एडम ईव कहा गया है, आदम और हवा कहा गया है, वही वास्तव में सच्ची रूपि रंगमंच के हीरो हीरोइन है। तो भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते रहते हैं गीत, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। ज्ञान मार्ग कहा जाता है समझ के मार्ग को, ज्ञान मानो समझ, सिर्फ गीत नहीं जाना। भक्ति मार्ग में सब रावण की जेल में। अभी बुद्धि में आता है भक्ति की कितनी सामग्री है, इस समय तुमको कुछ नहीं करना। भक्ति मार्ग में ढेर सामग्री इकट्ठी करते हैं। ज्ञान मार्ग में जब ज्ञान में परिपक्व स्टेज हो जाए तो ज्ञानी को कोई भी सामग्री, कोई भी टाल मटोल इकट्ठी करने की दरकार नहीं है, क्योंकि जब बुद्धियोग एकाग्र हो जाता है तो सब कुछ, सारा काम बुद्धियोग से होता है। विश्व की बात का ही योग बल से मिल जाती है। भक्ति मार्ग में बहुत भटकते, यहाँ भटकने की कोई बात नहीं। बात समझाते हैं बच्चों को, पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है। अगर कोई सवेरे सवेरे नहीं आ सकते तो उनको दिन में आ जाना चाहिए, इसको तंग भी नहीं करना है। सारा दिन पड़ा हुआ है, कोई भी समय आकर के पढ़ना है। ये बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर हैं, सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए, दोपहर को बंद हो जाते हैं, 12 बजे बंद हो जाते हैं। तो बाबा झूठ बोलता है, है कि सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं। जो बाबा के बच्चे होंगे, बाबा के बने होंगे, वो बाबा की बात पर अमल करेंगे। वो तो सारा दिन जिज्ञासुओं के लिए सर्विस स्टेशन खुले हुए रखेंगे। इसलिए मुरली में बोला, ब्रह्मा कुमारियों की बहुत बुरी आदत है दोपहर में सोने की, कोई भी आगे उनको रास्ता बताना, पहले तो बताना है विचार करो, तुमको दो बाप हैं, दुख में पारलौकिक बाप को याद करते हैं ना। अभी शिव बाबा कहते हैं मां एकदम याद करो, मौत तो सामने खड़ा है। ये वो ही महाभारी महाभारत का लड़ाई है, कौन सी क्या याद दिलाया, जो गीता में लिखा हुआ है।
क्या लिखा है गीता में? अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये जो तू देखता है नाना चाचा मामा काका ताऊ, ये सब तेरे सामने खड़ा है, खड़े हैं, ये सब मरे पड़े हैं, इन सब के सामने मौत खड़ा।
तो ये जैन है, महाभारी महाभारत लड़ाई का समय है। बल बड़े पदमपति करोड़पति बड़े बड़े मकान बनाते हैं, परंतु वह रहने थोड़े ही है। कौन सी दुनिया की बात है? पहले तो हर बात ब्राह्मणों की संगम की दुनिया पर लागू होती है। ये सब श्रीमत के बरखिलाफ जो भी बनाए गए हैं, बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां, वो सब टूट जावे। समझते हैं अंडरग्राउंड बनाए रहे हैं, कंक्रीट का बनाए रहे हैं, बहुत मजबूत बनाए रहे हैं, एटम बमों के पावर से उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन ये सब होना नहीं। हाँ, बाप की मत रही, श्रीमत रही कि माउंट आबू में जो बाप का घर है वहां से बच्चे बैठ करके विनाश को देखेंगे। तो मधुबन में जो मकान बनाए जा रहे हैं वो तो ठीक, माउंट आबू वो है तपस्या भूमि, तपस्या का प्रभाव विनाश काल में भी रहेगा, उनको आंच नहीं आएगी। बाकी दुनिया में तो हर जगह टूट फूट होनी ही होनी। बाबा कहते थे इसलिए कि बच्चे किराए पर मकान लेते जाओ, जब तक मम्मा बाबा जीवित रहे तब तक कोई भी सेंटर बाहर पैसे से खरीद करके अपने मकान नहीं बनाए गए। बाद में बाबा की मत भूल गई। जब होना ही है विनाश तो महल मारियां अटारियां बना करके क्या करेंगे, काम चलाना है तो किराए पर काम चलाते रहते। तो ये मकान महल मारियां रहने छोड़े ही है, ये सब टूट जाने। वो समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है, क्यों बनाते हैं? हैं? इतने मजबूत मकान बनाए रहे हैं, वो बनाने का कारण ये है कि बुद्धि में बात बैठी हुई है कि अभी दुनिया का विनाश होने वाला नहीं है। इनको कहा जाता घोर हथियार। जब से ये बड़े बड़े मकान महल माड़िया अटारियां बनना शुरू हुए तब से समझ लो घोर अंधियारा शुरू हो गया। रात्रि के 12 बजे उसी समय बाप आ जाते हैं। उस टाइम को कहते हैं महाशिवरात्रि, घोर अंधियारा। कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं हम बनावे मकान बनावे। बाबा कहेंगे पैसे हैं तो भले बना लो, पैसे भी तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं ना, तो मकान भी तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ कम से कम इस जन्म में भोग तो लेओगे थोड़ा बहुत 2-4 साल। पैसे भी क्यों लगाया, पैसे भी मिट्टी में मिल जाने हैं तो जो मकान बनाओगे वो भी तुम्हारी देह अभिमान की मिट्टी में मिल जाएगा। जिस देह की सुरक्षा के लिए, अपने देह के संबंधियों की सुरक्षा के लिए तुमने ये मकान बनाया है वो भी इस देह अभिमान की तुम्हारी मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये तो सब टेम्परेरी है। क्या पैसे या मकान वगैरह जो बन रहे हैं वो सब टेम्परेरी है, नहीं तो ये सब पैसे भी चले जाएंगे, कुछ भी रहेगा नहीं। तो भल बनाओ, तुम बनाओ परंतु फिर क्या करो, भल बनाओ ये तो कहा लेकिन साथ साथ पख भी लगा दी कि कल्याण कैसे होगा। उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो, मकान भल बना लो लेकिन उसमें गीता पाठशाला बनाओ, जो तुम्हारे दर पर कोई भी आगे मन तुम्हारा दुश्मन आ जाए तो है तो भगाए देना है या उसको रास्ता बताना है, उसको भी रास्ता बताना है। कोई भी आएगा मतलब XYZ किसी के लिए मना नहीं है। जो तुम्हारे दर पर कोई भी आवे उनको शिक्षा ऐसी दो जो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दे। ऐसी गीता पाठशाला खोलो। गीता पाठशाला का मतलब ही क्या हुआ, गीता कौन से नाता है? गीता तो एक भगवान बाप ही की गाई हुई है और भगवान जहाँ पाठ पढ़ाता है वही गीता पाठशाला है। तो भगवान की पाठशाला में किसी को आने के लिए मना नहीं है। अगर मना करते हो तो इसका मतलब तुमने वो गीता पाठशाला नहीं बनाई, तुमने सारा ही अपना घर बनाई। बाबा पुत्र कहते हैं एक कमरा गीता पाठशाला के लिए छोड़ दो। तुम्हारे पास अथाह ज्ञान धन है, इतना कोई के पास नहीं। तुम्हारे पास सबसे साहूकार वो है जिनके पास बहुत ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे हुए हैं। कोई भी आवे तो तुम उनकी झोली भर दो। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या गए ना, भर दे झोली भर दे झोली। तुम्हारे पास इतना खजाना है कि तुम सबकी झोली भर सकते हो। खजाना खुटने वाला नहीं है, सिर्फ ये बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बता दें। परंतु बच्चों में वो नशा नहीं रहता है, यहाँ नशा चढ़ता है और बाहर जाने से भूल जाते। शौक होना चाहिए, कोई भी आवे तो उनको रास्ता बताएं जो बेड़ा पार हो। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है, कौन सा? ज्ञान रत्नों का। कोई भी भिखारी आवे, बस लखपति भी आवे तो तुम उनको भी रत्न दे सकते हो। ठीक है, बाबा यहाँ नशा चढ़ाता है, फिर नीचे जाते हैं तो सोडा वाटर हो जाता है। बाबा तुम्हारी अभिनय की ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, परंतु बच्चे नंबर वार हैं। किसकी तकदीर में है तो पूरे रत्न धारण कर लेते हैं। बाबा कहते हैं कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो, ऐसे नहीं कि सेंटर में जाकर एक जगह बैठना है। जब तक बैठ करके याद कर रहे हैं तब तक याद है नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहे। कम कार्ड सिलियार्ड, अर्थात बुद्धि का योग बाप के साथ हो। कम कार्ड माने कार्य में बुद्धि लगी रहे, ऐसे नहीं काम हाथों से करो लेकिन बुद्धि बाप में लगी रहे। बाप की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा, तुम एक जन्म के लिए साहूकार बन जाते हो। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सत्व प्रधान बन गई। बाप को याद करेंगे तो नशा करेगा। हमारे जैसा धनवान शक्ति में कोई नहीं, ये नशा भी कब चलेगा? जब हम बाप को और बाप की प्रॉपर्टी को याद करेंगे, उसके महत्व को जानेंगे। बाप ही याद नहीं होगा तो धन कहाँ से आएगा? क्योंकि ये ज्ञान धन तो बाप ही देता है, बाप के सिवाय और कोई ज्ञान दे नहीं सकता। और तो सब अज्ञान ही सुनाते। स्वर्ग में तो तुम बच्चों को अपार सुख मिलता है, शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएं लिख दी है, गाते भी हैं, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है जिए दाता, धर्म का उपकार है। ये भक्ति मार्ग में गाते हैं, फिर कहते हैं राम की सीता चुराई गई। बंदरों की सेना ले ली, रावण को मनुष्यों की सेना दिखाई और राम को एक भी मनुष्य नहीं मिला। बंदरों की सेना ले ली, आगे खुद भी पढ़ते थे, कुछ भी समझते नहीं थे, अब कितना समझ में आता है। कितनी वंडरफुल बातें लिखी हुई है शास्त्रों में। बाप कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। आधार किसका लेना पड़ता है? पड़ता है कि बात क्या है? मुझे ऐसा काम करना पड़ता है, क्या करें? करता है मैंने मजबूरी है, इसके अलावा कोई दूसरा चारा चारा नहीं है। प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। क्यों? मनुष्य का आधार ले लो, प्रकृति का आधार क्यों लेना पड़ता है? प्रकृति मानो पांच तत्व का संघात, पांच तत्व के समूह संघात को क्या कहते हैं? शरीर। पांच तत्वों का जो पुतला है ये शरीर, ये प्रकृति का सबसे श्रेष्ठ नमूना, तो मुझे इसका आधार लेना पड़ता है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, परंतु ये भी समझते नहीं है कि विष्णु कौन है। यह भी शब्द क्यों लगाया? बताया मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, फिर बताया कि त्रिमूर्ति में भी इसका मतलब प्रकृति के पुतले कौन कौन हुए? तीन मूर्तियां। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, परंतु वो भी समझते नहीं है कि विष्णु कौन है। अरे विष्णु का पुतला बनाया है, चित्र बनाया है, तो जरूर चरित्र करने वाला भी तो कोई होगा ना? तो ब्रह्मा का तो मान लेते हैं कि ब्रह्मा पांच तत्वों का पुतला है जिसका परमात्मा ने आधार लिया, बाकी विष्णु और शंकर को नहीं समझ सकते। और भक्ति मार्ग में पूजा सबसे जाती के कौन से रूपों की होती है? शंकर की और विष्णु की ही पूजा होती है। तो इसे साबित क्या हुआ कि ब्रह्मा का रूप पूज्य रूप नहीं बना, उसके मंदिर नहीं बनते हैं, मूर्तियां नहीं बनती हैं, पूजा नहीं होती है, लेकिन विष्णु और शंकर के रूप की पूजा होती है, मूर्तियां बनती हैं, तो वो संपन्न रूप है। जिन्होंने अधूरे रूप को पकड़ लिया वो अधूरे धर्मों में जाने योग्य बन गए, और जिन्होंने संपूर्ण रूप को पकड़ लिया वो 84 जन्मों को प्राप्त करने वाले, परमात्मा से डायरेक्ट प्राप्ति करने वाले देवी देवताएं पक्के बन गए। तो ये समझना है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भी प्रकृति के पुतले हैं, कोई चरित्रधारी हैं। जो चरित्र होते हैं उन्हीं का चित्रण किया जाता है मूर्तियों में। ये कहां से रहने वाले कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का भी मंदिर कहते हैं, नर नारायण का मंदिर माने जो नर से नारायण बनता है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जहां भी नर नारायण के मंदिर बने हुए हैं तो विष्णु का रूप जरूर दिखाते हैं। बिरला मंदिर बने हुए हैं उनमें भी नर नारायण का मंदिर, लक्ष्मी नारायण की अलग मूर्ति भी रखेंगे, फिर बाजू में विष्णु की मूर्ति भी रखेंगे, क्योंकि विष्णु की मूर्ति बगैर लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकते। विष्णु के ये दो रूप लक्ष्मी नारायण है। कौन कौन से दो रूप? संगमी की लक्ष्मी नारायण और सत्य की लक्ष्मी नारायण, जो सत्य में राज्य करते थे, वो विष्णु के दो रूपों का क्या अर्थ लगाते हैं? एक नारायण और एक लक्ष्मी, ये विष्णु के दो रूप हो गए। फिर चार भुजाएं क्यों देते हैं? भुजा माने क्या होता है? मददगार आत्मा बनती है या शरीर बनता है या भुजा बनती है? आत्मा ही मददगार बनती है, तो चार भुजाएं दिखाई गई उनका क्या मतलब हुआ? कि चार आत्माएं मददगार बनती है परमात्मा के कार्य में 100%। ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ पार्वती। तो विष्णु के ये दो रूप हैं, जो त्रिमूर्ति के चित्र में नीचे चार नाम दिए हुए भी है, जो पुराना त्रिमूर्ति का चित्र है उसमें चार नाम स्पष्ट दिए हुए हैं, लक्ष्मी नारायण और राम सीता। जो बाद के चित्र हैं, मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद बनाए गए, उनमें से राम सीता का नाम हटा दिया गया, क्योंकि अर्थ को समझते नहीं। जो सतगुरु में राज्य करते थे, अभी तुम मनुष्य के देवता बन रहे हो। कोई भी आवे तो बोलो, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, प्रजापिता ब्रह्मा इन सब का बाप हुआ। बहुत ढेर की ढेर प्रजा है, नाम तो सुना है ना। भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रखे, बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा दिया होगा। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते, तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक है लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक, ये अब तुमको अलौकिक बाप मिला। तीसरा, ये तो जवाहरी था, ये थोड़ा ही कुछ जानता था। इनके लिए कहते हैं कि इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में इनमें प्रवेश करता हूं। बहुत जन्म कितने होते हैं? 84। उन 84 जन्मों के अंत कौन सा टाइम हुआ? 84 जन्मों का अंत का टाइम कौन सा हुआ? ब्रह्मा के लिए जो इशारा दिया है, तो ब्रह्मा की 100 वर्ष आयु गई हुई है, तो 84वां जन्म और उसका अंत, अंत कहेंगे वानप्रस्थ अवस्था, बहुत जन्मों के अंत माने 84वें जन्म के भी अंत में वानप्रस्थ अवस्था में, 84 जन्मों के अंत के भी अंत में फिर वानप्रस्थ अवस्था और उसका भी अंत, वो कब होता है? उसका भी अंत कब कहेंगे? जब 100 वर्षों की आयु ब्रह्मा की पूरी हो, तो कब होती है? इनमें प्रवेश करता हूँ, इसने नहीं कहा। यानी दो आत्माएं हैं जिनके तन में परमात्मा प्रवेश होकर के परमात्मा पार्टधारी के रूप में प्रत्यक्ष होता है, तो बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में ये पीरियड कब हुआ? जब 100 वर्ष की आयु पूरी हो प्रजापिता ब्रह्मा, 36-37 में 60 वर्ष की एज में वानप्रस्थ अवस्था में परमात्मा ने पहले प्रवेश किया, लेकिन वो प्रवेशता का पता नहीं चलता किसी को, कब आया, वो प्रत्यक्षता कब होती है? जब 100 वर्ष प्रजापिता ब्रह्मा की आयु पूरी होती, तो 60 वर्ष 36 में और 40 वर्ष और ऐड किए तो 76 आता है। जिस 76 के लिए 66 में घोषणा कराई थी कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी, तो वो संगम हुआ है कि रेट घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि हो जाती है, जिसमें ब्रह्मा के बच्चे और ब्रह्मा दोनों ही अज्ञान अंधियारी रात्रि में आ जाते हैं। ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात्रि में परमात्मा शिव प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। प्रैक्टिकल पार्टधारी के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है। पहले कौन से संसार में प्रत्यक्ष होता है? बाहर के संसार में या ब्राह्मणों के संसार में? पहले जरूर ब्राह्मण ही थे, पहचानेंगे। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी भारत में है। 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं, बाप इनमें प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके कहते हैं अब तुमको घर चलना। साधु सन्यासी आदि जो भी है सब मुक्ति चाहते हैं, परंतु मुक्ति को भी जानते नहीं कि मुक्ति क्या चीज है। वो समझते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है हमेशा के लिए, वो ही मुक्ति है। लेकिन मुक्ति का अर्थ होता है छुटकारा, कायर से छुटकारा पाना होता है, दुखों से छुटकारा हर कोई पाना चाहता है, कोई सुख से छुटकारा पाना चाहता है क्या? तो दुख दर्दों से छुटकारा, जन्म जरा मरण के दुखों से छुटकारा, अगर ऐसी स्टेज हमको मिल जाए तो वही वास्तव में मुक्ति है, वास्तव में ब्रह्म में लीन कोई हो नहीं सकता। ब्रह्म तो जड़ तत्व है, जड़ तत्व में चैतन्य आत्मा कैसे लीन हो जाएगी हमेशा के लिए? हाँ, ब्रह्म महत्तत्व रहने का स्थान है, जहाँ आत्माएं रहती है, लेकिन सदा काल के लिए तो नहीं रह सकती, इस सृष्टि पर तो जरूर आना पड़े, ये तो सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है, सबको पार्ट बजाना ही है। कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होता ही है, होती रहती है, ये अनादि जन्म बना हुआ है, 84 जन्मों का पार्ट तुमको ही बजाना, तुमको ही माने जो परमात्मा पार्ट के सन्मुख बैठने वाली मनुष्य आत्माएं हैं, वो ही 84 जन्मों का पार्ट बजा सकती हैं, बाकी दूसरे 84 जन्मों का पार्ट नहीं बजाते, उनके जन्म कम हो जाएंगे, 83 हो जाएंगे, 82 हो जाएंगे, भले वो सतयुग में लक्ष्मी नारायण ही क्यों न बने बाद वाले, लेकिन उनके भी जन्म कम होंगे, क्योंकि पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, इसलिए उनकी कलाएं भी कम रह जाती हैं, जन्म भी कम हो जाते। तो तुमको 84 जन्मों का पार्ट बजाना है, ये ज्ञान का डांस होता है। वो लोग फिर डमरू दिखाते हैं, है? किसको? शंकर को डमरू दिखाई देते हैं कि शंकर के हाथ में डमरू था। अब सूक्ष्म वतनवासी डमरू कैसे बजाएगा? सूक्ष्म वतन में डमरू कहाँ से आ गया? सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं, डमरू बजाने की बात भी कहाँ की है? ये भी संगम युग की बातें हैं। शिव का डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद खोले। बाप ने समझाया है, तुम बंदर मिसल थे, बंदरों के आगे डमरू बजाया जाता है, तो तुम बंदरों की सेना ली, दिखाते हैं डमरू का मतलब, डम डम आवाज होती है तो उनकी बुद्धि हिलती है, वो नाच नाचते हैं डमरू की आवाज पर, बुद्धि रूपी हाथ किसका होता है जो उस डमरू को पकड़ता है? परमात्मा शिव का बुद्धि रूपी हाथ उस डमरू को पकड़ता है, और डमरू दोनों तरफ बजता है, इधर भी बजेगा इधर भी बजेगा, बजाने वाली गोटी एक ही होती है और बजता दोनों तरफ है, आवाज भी सब वाद्य यंत्रों से न्यारी होती है, कहां मुरली की तान और कहां डमरू की तान। और कहते हैं जब एक टांग उठा के डांस करते हैं और डमरू बजाते हैं तब क्या होता है? और संसार में प्रलय हो जाती है, विनाश दिखाया हुआ है। तो तुम बंदरों की सेना ली है, तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, ये ज्ञान डांस करते हैं, मैंने तुमको ज्ञान देती है, अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों ही पलटाए रहे, क्या करके? डमरू बजाएंगे। काम किताब पर बैठ तुम काले हो गए, बाबा फिर तुमको ज्ञान किताब पर बिठाकर सूरत और सीरत दोनों पलटाकर सामने चेहरे से गोरा बना देते हैं। क्या क्या पलटाते हैं? सूरत कहते हैं चेहरे को, शरीर से कनेक्टेड है सूरत, और सीरत चलन व्यवहार। तो इसका कनेक्शन किससे है? किसका व्यवहार अच्छा हो, किसका व्यवहार खराब हो, इससे सूरत से कुछ लेना देना नहीं। सूरत किसी की खराब होगी तो भी अच्छा व्यवहार कर सकता है, और सूरत किसी की बहुत अच्छी हो वो भी खराब से खराब व्यवहार कर सकता है। तो सूरत अलग चीज और सीरत अलग चीज। सीरत का कनेक्शन है बुद्धि से। ये सब बुद्धि की ही कमाल है। जो कोई की सीरत अच्छी होती है और कोई की सीरत खराब होती है, तो दोनों ही बाप आकर के ठीक करते हैं, सूरत को भी सुधारते हैं और चलन को भी सुधार देते हैं। परमात्मा बाप ज्योति बिंदु शिव, उनको तो सूरत है ही नहीं, उनको अपनी सूरत है। जब उनको अपनी सूरत नहीं तो दूसरों की सूरत कैसे सुधार देंगे? वो तो मन बुद्धि रूपी आत्मा है परमात्मा शिव, तो जो जैसा है वो वैसा ही तो बनाएगा। डॉक्टर क्या बनाएगा? डॉक्टर बनाएगा, वकील बनाएगा। तो परमात्मा से वो मन बुद्धि रूप आत्मा है, वो आत्मा को सुधारेगा या शरीर को भी सुधार देगा? वो आत्मा को सुधार सकता है, लेकिन जिस तन में प्रवेश करता है पहले उस शरीरधारी के थ्रू संग के रंग से सूरतों को भी सुधारता है। इसलिए कहते हैं काया कल्प तरु समान बनाता हूँ मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया, दोनों का खिलैया एक ही बाप। ऐसे नहीं कि सिर्फ आत्मा को ही पार ले जाने वाला है, लेकिन इसी जन्म में इसी शरीर से कंचन काया भी बनाता है। वो डॉक्टर होते हैं वो तो एक जन्म के लिए कंचन काया बना सकते हैं, वो भी अल्पकाल के लिए, लेकिन ये डॉक्टर कैसा है? ये अविनाशी सर्जन ऐसा है जो इसी जन्म में गारंटी देता है कि मैं तुम्हारे शरीर के पांच तत्वों को कंचन काया बनाता हूँ 21 जन्मों के लिए। ऐसा सर्जन और कहीं हो नहीं सकता, तुमको मिला नहीं होगा जो ये कहे कि हम तुम्हारे शरीर को 21 जन्मों के लिए कंचन काया बनाए दें। तो सूरत और सीरत दोनों पलटा करके सांवरे से गोरा बना दिए। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, तो तुम्हारा नशा गुम क्यों होना चाहिए है? इसका कारण क्या है कि जो नशा गुम हो जाता है? नशा गुम क्यों होता है? क्योंकि बाप के वाइब्रेशन में आते हैं तो नशा चढ़ जाता है, और दुनिया के वाइब्रेशन में जाते हैं तो नशा उतर जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, ये अलग बच्चों को क्यों बताया? माता पिता अलग बताए दिया, बाप दादा अलग बताए दिया, ऐसे क्यों बताया? क्या अलग अलग बातें होती हैं? अलग अलग है, माता पिता अलग और बाप दादा अलग, अंतर क्या है? बाप दादा होते हैं कंबाइंड, यानी एक ही शरीर में दोनों, और माता पिता अलग अलग होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। प्रवेश करने वाली सुप्रीम सोल आत्मा एक ही होती है, वो सुप्रीम सोल माता में भी प्रवेश करता है और पिता में भी प्रवेश करता है। जैसे ये भी किया
बताई, जो नॉन सरेंडर्ड है उनको 8 घंटे तो रिजर्व है, काय के लिए? शरीर निर्वाह के लिए, और बाकी 16 घंटे उन्हें 5-6 घंटे अपनी नींद करें। वैसे योगियों की नींद होनी चाहिए चार घंटे की, काले तो कितने बचे, बारह घंटे बचेंगे कि नहीं, बारह घंटे में तो बहुत सर्विस हो जाएगी। आराम करने के लिए भी टाइम है, बाकी समय मेरी सर्विस में लग जाओ। याद का चार्ट रखो, लिखते भी हैं फिर चलते चलते फेल हो जाते, बात को याद नहीं करते हैं, सर्विस नहीं करते हैं, तो कोई न कोई रंग काम हो जाता, गलत काम कब हो जाते हैं जब फ्री रहते हैं। इसलिए कहा कि डबल लॉक लगाओ। डबल लॉक कौन सा? याद और सेवा, बस याद और सेवा की सांस लगी रहे और कुछ भी याद नहीं। बाप को याद नहीं करते हैं तो सर्विस नहीं करते हैं, फिर राम काम होता रहता है। अच्छा मीठे मीठे चिकिल्ले बच्चों के दिमाग से बाप दादा का याद क्या, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों।